सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सव्व पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पञ्च परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, तीर्थंकर भगवान के जो 46 मूल गुण होते हैं उनका कथन यहाँ चल रहा है। छियालीस मूल गुण ये उत्कृष्ट रूप से बताए गए हैं। जो 46 मूल गुण के धारी होते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। ये 46 तीर्थंकरों में ही पाया जाना संभव है। अन्य तीर्थंकरों में, अन्य केवल ज्ञानियों में जो गुण होना चाहिए, चार गुण तो विशेष रूप से होते ही हैं। कैसे चार गुण? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार गुण तो होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। परंतु शेष जो गुण हैं उनमें कम वेशीपना होना स्वाभाविक है, संभव भी है। जैसे जन्म के 10 अतिशय पढ़कर के आए थे, उन अतिशयों में शरीर की सुंदरता हो या न हो ऐसा हो सकता है सामान्य केवलियों में। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्योंकि शरीर सुंदर ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। हुंडक संस्थान वाले भी जीव यदि वज्रषभ नारायण सननधारी हों तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, सम चतुरस्र संस्थान जरूरी नहीं है, तीर्थंकर के लिए जरूरी है। सामान्य जो केवली होते हैं उनमें समचतुर संस्थान नियम से होता ही है ऐसा हम कह नहीं सकते, नियम नहीं बनाया जा सकता। परंतु जो जो तीर्थंकर होंगे उनको वज्रोषव नारासनन भी होगा और समचतुरस्र संस्थान भी होगा, ये दोनों नियम से होंगे। यही नियम अन्य अरहंतों को भी लगाना चाहते हैं तो लगेगा नहीं। हाँ, वो तो कंपल्सरी है। समचतुरस्र संस्थान यानी शरीर की सुंदरता, कन्नड़ में कहा है, एक कहावत है, आकड़ो कप्पादरे हालू कप्पे, कन्नड़ में बताया, गाय काली है तो क्या दूध भी उसकी काली रहेगी? कन्नड़ में कहावत है ये, दूध काली हो, गाय काली हो या सफेद हो या लाल हो, कैसा भी हो, दूध तो सफेद ही होता है, होना चाहिए, दूध सफेद ही होता है। मोक्ष जाना हो तो वज्र ऋषभ नारद सनन सबको रहता है, परंतु मोक्ष जाने वाले जीवों का संस्थान यानी शरीर की सुंदरता नाप तोल आदि में विविधता पाई जा सकती है, सुंदर असुंदर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और उस सुंदरता से क्या संबंध मोक्ष का? कोई संबंध नहीं। सौनहन, क्योंकि सौनहन के बिना तपस्या में बैठ जाना, कष्टों को सहन करना, मूल गुण उत्तर गुण आदि के जो परिचय आदि जो होते हैं इनको सहन करना संभव है क्या? नहीं है। इसलिए सौनहन तो कंपल्सरी चाहिए मुनियों को, किंतु संस्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो सकता है। संस्थान करने से शरीर की सुंदर असुंदर पने का बोध होता है, सौनहन कहने से शरीर की काया में रहने वाली शक्ति का बोध होता है, हड्डियों की शक्तियों की विशेषता का बोध होता है। तो यहां पर मुख्य कौन, सौनहन या संस्थान? सौनहन मुख्य है, संस्थान कोई भी हो चलता है, सौनहन तो पहला नंबर का ही होना चाहिए। देखो संस्थान भी 6 हैं और सौनहन भी 6 है। सौनहन कौन सा चाहिए? वज्र ऋषभ नारद सौनहन। संस्थान कौन सा चाहिए? समचतुरस्र संस्थान। तो सामान्य केवलियों में अगर शरीर सुंदर ना हो तो 46 में से एक तो चला गया, बच गए 45। और जन्म के बाद बाल्यावस्था अवस्था से लेकर के बड़े होने तक उनकी जो वाणी होती है अत्यंत मधुर होती है, तीर्थंकर हो तो मधुर, परंतु तीर्थंकर पर्याय में जो जन्म नहीं लेते, सामान्य मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं और मोक्ष जाते हैं, उनकी वाणी मधुर हो ये कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर कभी किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, शांत रहते हैं। नेमिनाथ भगवान किसी से लड़े? कृष्ण से कभी लड़ पड़े वो? नहीं। कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तीर्थंकर कभी किसी से राग द्वेष करना, लड़ना, उसको दूसरे के कष्ट को असह्य समझकर खेद खिन्न होना इत्यादि उनके द्वारा नहीं हो सकता। किंतु उनके काल के कौरव पांडव कितने लड़ पड़े? लड़ने वाले भी मोक्ष गए हैं क्या? नहीं। पांडव मोक्ष गए? नेमिनाथ भगवान ने युद्ध नहीं किया, कृष्ण का पांडवों का कौरवों का संघर्ष हुआ कि नहीं परस्पर में? तो संघर्ष, ऐसा संघर्ष नहीं करते, संघर्ष करने वाले कभी मीठे वचन बोल नहीं सकते। संघर्ष का समय आता है तो कठोर वचन बोलना ही पड़ता है, परंतु तीर्थंकरों को ऐसी कभी समस्या जीवन में आती ही नहीं। इतना बड़ा पुण्य होता है कि उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता। तो वाणी को जैसे मधुर रखना चाहिए, उनकी वाणी मधुर ही रहती है। पूर्व का पुण्य इतना तीव्र पुण्य होता है कि एक बार भी कठोर वचन उनके मुख से नहीं निकलते, ऐसे होते हैं तीर्थंकर। इसलिए सामान्य जीवों से पृथक होता है तीर्थंकर पद का अस्तित्व, और इसलिए वह अतिशय की कोटि में आता है। निर्णय नहीं, तीर्थंकरों को निर्णय करने के लिए कोई अन्य मति जीव आवश्यक नहीं होता। तीर्थंकर स्वयं अपने पुण्य से तीर्थंकर हैं यह निर्णीत होता है। जन्म के पश्चात जिनके मांच कल्याणक देवों के द्वारा संपन्न होते हैं, देव जिनके पांच कल्याणों को करते हैं, ये तो दुनिया को पता ही रहता है। इंद्र आए, ऐरावत हाथी पर बिठाया और चल पड़े सुमेरु पर्वत की ओर। ये क्या मनुष्य लोक में किसी को पता नहीं रहता है क्या? रत्नवृष्टि जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले कितने महीने तक, 7 महीने तक, 6 महीने तक, बाद में फिर 9 महीने तक जो रत्नवृष्टि होती है, ऐसी रत्नवृष्टि होती देख करके तीर्थंकर सारे लोग मानते हैं। ये अतिशय देवकृत अतिशय रत्नवृष्टि आदि का क्या सामान्य लोगों को होता है कहीं? तो फिर तीर्थंकर कौन? जब जन्मे तब इंद्र का सिंहासन भी हिल गया, देव परिवार सहित नीचे आए और उनको ऐरावत हाथी पर बिठा करके उत्सव के साथ अभिषेक के लिए ले गए। ऐसा अतिशय और किसको होता है? केवल तीर्थंकरों को ही अतिशय ये होते हैं। इस प्रकार मालूम होते हुए भी ये तर्कनाएं चलती हैं कि वो तीर्थंकर नहीं है। ये तर्कनाएं चलती हैं, अन्य मतियों में तर्कना चलती है कि ये तीर्थंकर नहीं है। अज्ञान तो है ही, अन्य मत का मतलब क्या है? अन्य मत इज इक्वल टू अज्ञान। और स्वमत यानी आत्मा का मत, आत्मा का मत सो जीव तत्व का मत। हम जीव तत्व को मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, 7 तत्वों को मानते हैं। ये 7 तत्व अपने आत्मा के स्वरूप हैं, इनको मानते हैं तो हम स्वमत वाले। और 7 तत्वों को मानने पर ये सब कुछ आ जाएगा, ये 10 अच्छे भी आ जाएंगे, केवल ज्ञान के अच्छे भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो तीर्थंकर के लक्षण ये हैं: सुगंधित शरीर होना, ये तीर्थंकरों का लक्षण है, सामान्य में ये लक्षण नहीं होता। तो तीर्थंकर है या नहीं इसका परीक्षण करना हो तो उनके पास जाओ, बैठो, शरीर से सुगंध आ रहा है कि नहीं, पाउडर लगाए बिना सुगंध शरीर में। ये पहचान होती है तीर्थंकर की। बाल्यावस्था में भी उनको पहचान सकते हैं, ये जो आ रहा है बालक ये कौन है। अगर शरीर से सुगंध आने लग जाए और अत्यंत मधुर वचन बोलने लग जाए, शरीर बिल्कुल सुंदर हो और बिल्कुल दृढ़ भी हो, समचतुरस्र संस्थान, वज्रषभ नारासनन, और उनको मलमूत्र न हो, ये सारे लक्षण बाल्यावस्था में भी दिखेंगे कि नहीं, तो वही तीर्थंकर। अब वो जो प्रश्न कर रहे थे महावीर पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के काल में, वो प्रश्न करने वाले इसको नहीं जानते, इनके अभाव में, इनके परोक्ष में चर्चा होती, पर इन 10 अतिशयों को ख्याल में नहीं रखते। साक्षात सामने हो तीर्थंकर तो मानना ही पड़ता है कि ये तीर्थंकर हैं, क्योंकि इनमें सामान्य जीवों से विशेष रूप, अतिशय रूप 10 अतिशय जन्म के पाए जा रहे हैं। ये जो दूर दूर रहते हैं तीर्थंकर को छोड़कर, वो तर्क ना करते, क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं, तीर्थंकर के पास आए नहीं, उनकी महिमा को अंदाज नहीं किया, तो वो तर्क ना करते। पसीना नहीं आता, देखो तो पसीना तक नहीं आता, रक्त का श्वेत होना तीर्थंकर है क्या नहीं देखना हो तो थोड़ा सा रक्त लेकर को टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो कि तीर्थंकर है क्या, सामान्य है ये, तो ब्लड टेस्ट से भी तीर्थंकर सिद्ध होते हैं। या तो ऐसा करो, अतुल बल है उनके पास, दुनिया के किसी भी पहलवान को ले आओ यहां। जन्म से ही नहीं, परम औदारिक तो केवल ज्ञान के बाद, 12वें गुण स्थान में जाने के बाद जब निगोदी जीवों से यह शरीर खाली हो जाता है तब परम औदारिक बन जाता है। 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान परम औदारिक शरीर वाले कहलाते हैं, और उनका शरीर सप्त धातुओं से रहित तो होता है, बदबू नहीं आती। रहता है लेकिन पवित्र, हाँ हाँ, वो सभी मल के कोटि में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें से निगोदी जीवों का अभाव हो गया है, और वो पुद्गल परमाणु जो है ना, फिल्टर प्योर बन गए हैं, पवित्र बन गए, इसलिए परम औदारिक कहा जाता है। अतुल बल तीर्थंकर है या नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन कुश्ती तो खेलो उनके साथ, एक बार पता चलेगा। कृष्ण को बताया था ना, एक छोटी अंगुली पर, ये कौन सी अंगुली मराठी में, करंगली, करंगली, हाँ करंगली पर ही उठाया था वो चक्रवर्ती बलशाली, और ये तीर्थंकर कोमल शरीरी, शरीर तो बहुत कोमल देखने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुडोल सुंदर, लेकिन मजबूती में इतना मजबूत कि चक्रवर्ती को भी इस अंगुली पर उठा सकते थे। हाँ, उनका भी वज्रषभ नारद सनन और इनका भी वज्रषभ नारद सनन, लेकिन बल में फर्क है। चक्रवर्ती के बल से भी तीर्थंकरों के बल को तुलना नहीं कर सकते, इसलिए तीर्थंकर। और लक्षण देख लो फिर, पांव में कितने हैं सामान्य को और तीर्थंकर को, जो एकदम सुडोल सुंदर ही रहे वो तो तीर्थंकर है ही। कामदेव भी देखो, वो भी एक पद है, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, ये भी पद, कामदेव, इनमें भी कहीं ना कहीं एकाद लक्षण कम होता है, लेकिन तीर्थंकरों का लक्षण कहीं से कहीं तक कोई भी कम नहीं रहता। बल की अपेक्षा से देखो तो कामदेव की अपेक्षा से तीर्थंकर का बल अधिक है। जो भी 63 शलाका पुरुषों में से शेष शलाका पुरुष हैं तीर्थंकरों को छोड़कर, उन सबका बल उनके सामने कुछ नहीं। इंद्र का, उनका भी कम। इसलिए प्रथमान युग आदि में तीर्थंकर की महिमा को इतना बड़ा चढ़ा करके लिख दिया ताकि पता चल जाए कि तीर्थंकर का बल कितना होता है। जब अभिषेक करने के लिए इंद्र बालक को ले गए थे तो पांडुक शिला पर बिठा करके बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करने लगे, अभिषेक करने लगे तो कलश का नीर ज्यादा गिर रहा था और इंद्र कहने लगा कि इतने ज्यादा मत डालो, तीर्थंकर अभी बालक हैं, कहीं बह न जाए। तो तीर्थंकर बालक अवधि ज्ञानी, ये क्या बोल रहा है मेरे लिए? उसने क्या किया, उस बालक ने अपनी अंगूठी को पांडुक शिला से यूं दबा दिया थोड़ा सा और पूरा सुमेरु पर्वत कंपायमान होने लगा। तो फिर समझ में नहीं आया कि ये क्यों हिल रहा है ये सभी। तो फिर अवधि ज्ञान से देखा तो भगवान की अंगुली दब रही है, वो दबा रहे हैं सुमेरु पर्वत पांडुक शिला की अंगुली को दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं ये अवधि ज्ञान से जाना तो पता चला कि हमने गलती की। उनको उन पर शंका की कहीं ये बह न जाए, तुरंत क्षमा मांगी, हे भगवान हमने शंका जो की वो अज्ञानवश की, आप क्षमा करो, कंपायमान को बंद करो। तो अंगुली हटा ली, हिलना बंद हो गया, भूकंप बंद हो गया। बहुत शक्ति होती है, ये कौन सी शक्ति, ये पुण्य की शक्ति है, ये पुण्य काम करता है। पुण्य के बिना तो कुछ नहीं होता, ऐसा पुण्य कर्म हमको करना चाहिए। अपनी आत्मा भी वैसे पुण्य को कमा करके आगे बढ़ जाएगी तो तीर्थंकर नहीं बन सकती क्या? बन सकती है, लेकिन पुण्य पाप पर पहला विश्वास तो करो कि पुण्य भी है और पाप भी है, और इस प्रकार से पुण्य के कारण से बल इतना श्रेष्ठ बल की प्राप्ति होती है। विश्वास होना चाहिए हमें। कर्म सिद्धांत पर जिसको विश्वास नहीं होता उसकी शंकाओं का कोई अंत ही नहीं रहता, पल पल पर शंका होंगी। कोई भी विषय का निर्णय हम कर ही नहीं सकते कर्म सिद्धांत का ज्ञान न हो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास न हो। सारी शंकाओं का निवारण देने वाला कर्म सिद्धांत है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म सिद्धांत के श्रद्धांत से ही होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आश्रव तत्व ये क्या है? कर्म। बंद तत्व ये क्या है? कर्म। निर्जरा तत्व ये क्या है? कर्म। अजीव तत्व ये क्या है? कर्म। जीव में अनंत शक्ति है तो कर्म में भी अनंत शक्ति है। जीव में अनंत शक्ति है तो कर्म रूप पुद्गल परमाणु में भी अनंत शक्ति है, जो वह अपने शक्ति को प्रदर्शित जब करता है तब हमारी दृष्टि उस ओर जाती है जो तीर्थंकर हैं। देखो तीर्थंकर प्रकृति भी एक पुण्य प्रकृति है और अपने पास भी पुण्य प्रकृतियां कई हैं। मनुष्यायु है, मनुष्य गति है, सातावेदनी कर्म है, उच्च गोत्र है, ये क्या हम लोगों के पास नहीं है पुण्य कर्म? हैं, लेकिन हमारे पास आज क्या नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, और वह तीर्थंकर प्रकृति हो तो अन्य शेष जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके साथ उसकी कोई तुलना हो सकती? तीर्थंकर प्रकृति के साथ किसी भी पुण्य प्रकृति की तुलना कर ही नहीं सकते, छोटे पड़ जाते। और ये विशेष बात है, तीर्थंकर प्रकृति एक है तो शेष जो पुण्य प्रकृति हैं वो भी चमकने लगते हैं, उनमें भी एक अलग से विशेषता आती है, अतिशय आता है शेष पुण्य प्रकृतियों में भी। उच्च गोत्र अलग ही विशिष्ट क्वालिटी अलग रहेगी, वो सातावेदनी अलग क्वालिटी की, यानी उसका प्रभाव इस पर चंद्र के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में कुछ विशेषता है कि नहीं? क्या दोनों एक हैं और दोनों का नाम प्रकाश है तो एक होना चाहिए? प्रकाश कहने से सभी एक प्रकार का ही प्रकाश होता है ऐसा नहीं, एक दीपक का भी प्रकाश है, एक मोमबत्ती का भी प्रकाश है, एक उदपत्ति का भी प्रकाश है, एक लाइट ट्यूबलाइट का भी प्रकाश है, एक चंद्र का भी प्रकाश है, एक सूर्य का भी प्रकाश, कितने प्रकार का प्रकाश, सब में अंतर है। लेकिन उच्च क्वालिटी का प्रकाश किस में है? हैं? बाहर में, सूर्य में है, सूर्य में है। लाइट तो है, ये कहां लगेगा? ये यहीं पर प्रकाशित कर रहा है थोड़े से प्रदेश को। लेकिन सूरज देखो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, एक ही लाइट, उसका स्विच नहीं है, विदाउट स्विच वाला बल्ब है वो, और वह घूमता रहता है, चलायमान है। ये देवों का विमान है, इस विमान से निकलने वाली किरणें, ये प्रभा अत्यंत उत्कृष्ट है, सभी प्रकाशों में उत्कृष्ट प्रकाश सूर्य का। और इस सूर्य के प्रकाश को भी, इस सूर्य के प्रकाश को भी फीका करने वाला भी कोई प्रकाश है? कौन सा है? नहीं नहीं, भौतिक में पूछ रहे हैं हम। सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित, यानी सूर्य चंद्र भी नहीं दिखते जिसके प्रकाश में, वो कौन है? नहीं, ज्योतिरंग कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों का प्रकाश सूर्य और चंद्र से भी ज्यादा है। सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश कल्प वृक्षों का, और कल्प वृक्षों से भी ज्यादा प्रकाश केवल ज्ञानियों का, केवल ज्ञानी परम औदारिक शरीरी उनका, इसलिए उनकी छाया नहीं पड़ती। बल्ब की छाया कहां पड़ रही है? बल्ब की छाया दिखाओ, छाया क्यों नहीं है? हाँ, स्वयं प्रकाशमान जो वस्तु होती है उसकी छाया नहीं पड़ती। इससे भी ज्यादा प्रकाशमान वस्तु को साइड में रखेंगे तो इसका भी प्रकाश पड़ सकता है। हाँ, इस छाया पड़ सकती है, इसकी भी छाया पड़ सकती है। कल्प वृक्षों की छाया कहाँ पड़ती है? ज्योतिरंग कल्प वृक्षों की नहीं रहती छाया। आकाश में सूर्य चंद्र रहते हैं, इन कल्प वृक्षों के प्रकाश में वो पता ही नहीं चलते आकाश में है क्या नहीं। और इसलिए भोग भूमि में न दिन है न रात, दिन रात कुछ भी नहीं है वहां, 24 घंटा प्रकाश। तो दिवस को कैसे गिनेंगे? गिनेंगे रात हो या ना हो, दिन हो या ना हो, जहां पर रात ही रात है वहां पर दिन गिनाया जा सकता है क्या? नहीं, इतने घंटे व्यतीत हो गए तो 12 घंटे हो गए, और 12 घंटे निकले तो एक दिन व्यतीत हो गया। 24 घंटे का दिवस है और 12 घंटे का अर्ध दिवस है, आधा दिवस। भोग भूमि में भी दिनों को गिनाया जा सक दिनों को गिनाया जाता है, स्वर्गों में भी आयु को गिनाया जाता है, कितने वर्ष पूर्ण हो गए, कितनी आयु निकली, कितना शेष है। ये कैसे, सूर्य चंद्र है क्या स्वर्ग में? स्वर्ग में तो सूर्य चंद्र नहीं है, क्या है वहां? वहां पर भी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्षों का प्रकाश मिलता है, अपने अपने विमानों में कल्प वृक्षों से प्राप्त रत्नों को रखते हैं, उससे प्रकाश मिलता है। हाँ, क्षेत्र मर्यादा से प्रकाशित करता है, किंतु सूर्य मर्यादातीत प्रकाश को करता है, लेकिन कल्प वृक्ष के समान प्रकाशमान नहीं है वो। प्रकाश की शक्ति अधिक है कल्प वृक्षों में, ज्योतिरांग कल्प वृक्ष, ज्योति को प्रदान करने वाले, प्रकाश को प्रदान करने वाले, उसी से वो पूरा वो क्षेत्र प्रकाशित रहता है। दीपांग कल्प वृक्ष अलग है, ज्योतिरांग अलग है, क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले ज्योतिरांग कल्प वृक्ष, दीपांग दीप को देने वाले। आप बिल्डिंग में बैठना चाहते हैं, अंदर बैठना चाहते हैं तो अंधेरा रह सकता है, वहां पर अंधेरा हो सकता है ना, रात नहीं अंधेरा, रात अलग है अंधेरा अलग है। बिल्डिंगों में अंधेरा पड़ सकेगा क्या? नहीं। और वो बिल्डिंग भी कल्प वृक्षों से प्राप्त है, और उसमें प्रकाश चाहिए हो तो वो दीपांग दीप को ले जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं दीप, कोई आम का आकार का होता है, कोई ककड़ी का आकार का होता है, कोई लौकी का आकार का होता है। जिस प्रकार की आप कल्पना करो, इस आकार का हमें दीप चाहिए, तो वो उस प्रकार का आएगा, उसको ले जाना और कहीं भी घर में रख देना, प्रकाश पूरा। आज किससे मांगे हम सरकार से मांगते हैं। अपने गांव में बिजली नहीं है तो सरकार बिजली देती है। पहले किसी कोई सरकार नहीं था भोग भूमि में, कल्प वृक्ष ही सरकार है। उन कल्प वृक्षों के सामने जाकर के याचना करनी पड़ती थी, तभी सुख मिलता था। तो क्या बता रहे थे? हाँ, 24वां प्रश्न आया है। कल अष्ट मंगल द्रव्यों का कथन पूर्ण हुआ है। प्रातिहार किसे कहते हैं एवं अरिहंत भगवान के 8 प्रातिहार कौन कौन से हैं? उत्तर है, तीर्थंकर महापुरुषों की महिमा बोधक, यानी तीर्थंकर महापुरुषों की महिमा को बतलाने वाले, दर्शाने वाले देवों के द्वारा रचित प्रतीक विशेषों को प्रातिहार कहते हैं। ये सभी प्रातिहार देव निर्मित होते हैं, देवों के द्वारा निर्मित होते हैं, देवों के होते हैं। कौन कौन से वो 8? अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छत्र, 64 चंवर, पुष्प वृष्टि, दुंदुभी बाजे, दिव्य ध्वनि, ये हैं 8 प्रातिहार। ये तीर्थंकर की महिमा को ये प्रकट करते रहते हैं। अशोक वृक्ष यानी कहाँ रहता है ये? अशोक वृक्ष समोशरण में, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे रहते हैं उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष। ये अशोक वृक्ष पृथ्वी काय होता है। वृक्ष यानी यहाँ वनस्पति नहीं समझना, ये वृक्ष पृथ्वी काय होता है, कायिक भी नहीं, पृथ्वी काय होता है। कायिक यानी जीव सहित पृथ्वी, और काय यानी जीव रही, एकेंद्री जीव से रहित पृथ्वी। पाषाण ही वृक्ष के आकार का है, उसमें पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, सब हैं, परंतु सभी पत्थर के, उसमें जीव नहीं है, सभी अचित, अचित वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हाँ, प्लास्टिक के समान। यदि वनस्पति पेड़ के नीचे बैठेंगे, वनस्पति पेड़ भी अशोक वृक्ष जैसे है ना, यहाँ पर जो बाहर लगे हुए हैं यही तो अशोक वृक्ष हैं। अशोक वृक्ष के पत्ते ऐसे ही होते, समोच्चरण में जो अशोक वृक्ष होता है उनके पत्ते, उनका आकार प्रकार जो होता है ना, इसी टाइप से जो बड़े होते हैं, गोल होते हैं। यहाँ पर कई हैं ऐसे वृक्ष, अशोक वृक्ष। रुईकर कॉलोनी में बहुत पेड़ हैं, बहुत बगीचे हैं, हर घर के पीछे आगे पीछे बगीचे, और वो बहुत हरा भरा, इसलिए बड़े बड़े मच्छर भी हैं। हमको ध्यान में आया, लोग हाई फाई हैं तो मच्छर हाई फाई क्यों नहीं रहेंगे। एक मच्छर काटता है तो इतना बड़ा मोटा वो बन जाता है, गोला फोड़ा। मच्छर भी बहुत बड़े हैं, वो भी करोड़पति है। अशोक वृक्ष सिंहासन, ये अशोक वृक्ष कैसा होता है, रत्नों से जड़ित होता है, रत्नों से मंडित, रत्नों से मंडित रहता है, रत्नों से सहित रहे, रत्न चमकते रहते हैं, बहुत प्रकाश रहता है, और उससे ज्यादा प्रकाश भगवान का रहता है, रत्नों से भी ज्यादा प्रकाश भगवान का। सिंहासन, सिंहासन जिस पर विराजमान रहते हैं भगवान, सिंहासन पर कैसा होता है सिंहासन, सिंहासन नीचे रहता है, सिंहासन के बीच में एक कमल निकलता है ऐसा, और उस कमल से चार अंगुल अधर में तीर्थंकर भगवान पद्मासन से विराजमान रहते हैं। सिंहासन के ऊपर कमल रहता है, ऐसा नहीं कमल में सिंहासन और सिंहासन में भगवान, ऐसा नहीं। सिंहासन नीचे, उसके बीच में एक कमल, कमल भी पृथ्वी का है, सिंहासन भी पृथ्वी का है। हाँ, सोने का हो तो भी पृथ्वी का है ना, रत्न का हो तो भी पृथ्वी का कहना पड़ेगा, चांदी का हो तो भी पृथ्वी का है। चांदी कहाँ है, कहाँ से आ गया है चांदी, कहाँ से आ गई पृथ्वी से, सोना कहाँ से, धातु है ना ये सभी, तो ये सभी पृथ्वी काय हैं। आप लोग जो उपयोग में लाते हैं चूड़ी, अंगूठी और कुंडल वगैरह, ये आभूषण, ये सभी पृथ्वी काय हैं क्या कायिक हैं, ये काय हैं, जीव रहित हैं, क्योंकि इनको तपाया गया है, तपाने के बाद सोना पिघला, द्रव पिघला, द्रव के रूप में आया, फिर वह गाढ़ा हो गया, उससे आभूषण बन गया, ये पृथ्वी काय है, कायिक नहीं। एक पत्थर को तोड़ना, पत्थर को तोड़ने से पाप लग सकता है, लेकिन एक चूड़ी को तोड़ दिया सोने का, इसमें पाप नहीं लगा, यानी जीव हिंसा नहीं हुई। है पृथ्वी वो भी, एक एक पत्थर को तोड़ दिया, फर्शी को तोड़ दिया, ये तो कायिक है, और एक आभूषण उसको पिघला दिया या तोड़ दिया, गर्म कर दिया, इसमें कुछ हिंसा नहीं होती, उसमें कोई जीव नहीं है। हाँ, उसको पिघलाने के लिए अग्नि का उपयोग करते हैं तो अग्नि का एक जीव की हिंसा जरूर होती है, लेकिन उस वस्तु में जीव नहीं है। सिंहासन, भामंडल, भामंडल क्या कहलाता है? भगवान के पीछे, मस्तक के पीछे आभा मंडल अलग है, भामंडल अलग है। आभा मंडल तो शरीर के चारों ओर जो प्रकाश युक्त आभा निकलती है वो आभा मंडल, जो प्रत्येक मनुष्य का भी वह रहता है लेकिन दिखता नहीं, वह आभा मंडल है। ये भामंडल है, ये भामंडल स्वर्ण से निर्मित होता है, रत्नों से मंडित रहता है, और भगवान के मस्तक के पीछे जो मूर्ति के पीछे लगाते हैं ना गोल किरणों जैसे बना करके, वो भामंडल। और आभा मंडल क्या है? भगवान के परम औदारिक शरीर से जो प्रकाश निकलता है चारों ओर से, उसको कहते हैं आभा मंडल। आभा, आभा तीर्थंकरों की होती है और भामंडल देवों का होता है। आभा मंडल तीर्थंकरों का और भामंडल देवों का, देव निर्मित एक अतिशय है ये। भामंडल में, हाँ, देव निर्मित उस भामंडल में आपके सात भव झलकते। सात कैसे? सात पीछे के तीन, आगे के तीन और वर्तमान का एक, ऐसा ही है ना? नक्की? हाँ, ऐसा ही है, देखा होगा फिर कभी न कभी, ऐसा ही है, हाँ? शास्त्र में पढ़े हैं। तीन छत्र, छत्र तीन होते हैं, वो भी पृथ्वीकाय ही होते हैं, मस्तक पर एक के ऊपर एक, पहला वाला बड़ा होता है, उसके ऊपर वाला उससे छोटा, उसके ऊपर वाला उससे छोटा, ऐसा होता जाता है वो आकार छत्रों का। इससे क्या मतलब है? ऐसा क्यों? बड़े से छोटा, छोटा 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 होता जाता है, ये किसका प्रतीक है? नहीं है तो तीन, तीन होने से संख्या की अपेक्षा से तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, परंतु यूं जो जा रहा है और आगे जाकर के मिल जाता है, तो वो शिखर भी बांधते हैं तो ऐसा शिखर ऐसा होता है, शिखर कभी चौक नहीं होता, शिखर मिलता है आगे जाकर के, और कलश रखते हैं उसके ऊपर, उसकी एक अंतिम बिंदु बनती है। शिखर को ऐसा क्यों बांधते हैं? जैसा शिखर को गोल भी बना लो तो भी उसके ऊपर कलश रखने के बाद ऐसा जाकर के लास्ट में मिलता ही है ना, केंद्रित होता है लास्ट में जाकर। हाँ, उसका प्रतीक है कि हम जब तक संसार में रहते हैं बहुत विशाल रहते हैं, विशाल क्षेत्र में परिभ्रमण करते रहते हैं, शिखर नीचे नीचे विशाल होता है, संसार बहुत विशाल है, मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव विशाल नहीं रह पाता, एक में केंद्रित होता है। जब हम संसारी रहते हैं हमारा ज्ञान भटका हुआ रहता है, अनेकों में रहता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने के बाद एक में केंद्रित हो जाता है, आत्मा में। किंतु उस आत्मा के अंदर सारा लोक अलोक प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान नहीं भटकता, ज्ञान नहीं जाता, ज्ञानोपयोग के द्वारा वो प्रयत्न पूर्वक जाकर के किसी भी वस्तु को नहीं देखेंगे केवल ज्ञानी। हम लोग क्या है, किसी पदार्थ को देखने के लिए हम इधर उधर देखने लगते हैं, देखो उधर शेर आ गया तो उधर देखना पड़ेगा अपने को और पता लगाना पड़ेगा कि शेर है क्या, शेर है, शेर 1 किलो। हम उपयोग लगाते हैं, छद्मस्त को उपयोग लगाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। छद्मस्त का ऊपर उपयोग बहिर्मुखी होता है, केवल ज्ञानी का उपयोग बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी ही रहता है, किंतु अंतर्मुखी उस अनंत उपयोग में सारा लोक अलोक प्रतिबिंबित होता है। जैसे दर्पण, इसका उदाहरण दिया है, यद्विद्या दर्पणायते नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते। जिसकी केवल ज्ञान रूपी विद्या यानी ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में कुछ नहीं है, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे लोक और अलोक के सारे द्रव्य गुण और पर्याय, अनंत द्रव्य अनंत गुण अनंत पर्याय प्रतिबिंबित होते हैं। आप समो शरण में चले गए तो भगवान ये व्यक्ति आ रहा है ऐसा क्या, आपके ऊपर उपयोग टिका करके आपके ऊपर ध्यान ले जा करके जानेंगे? नहीं, भगवान बैठे रहते हैं, आप कहीं से भी आ जाओ पहले से ही उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित ही हो रहे हैं, झलक रहे हैं कि आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, फलाने व्यक्ति राजा श्रेणी का आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ देखना नहीं पड़ता उनको। राजा श्रेणी कहाँ है, क्या कर रहा है, किस अवस्था में है, सो रहा है कि उठ रहा है कि आ रहा है, सभी प्रतिबिंबित, प्रति सेकंद की सारी पर्याय प्रतिबिंबित होती रहती है। ऐसा प्रतिबिंबित हमारे ज्ञान में कुछ हो रहा है क्या? जो कुछ घटित हो रहा है बाहर में, वर्तमान में भी जो घटित हो रहा है और हमसे परोक्ष है यहाँ से, वो कुछ से आ रहा है क्या ज्ञान में? केवल ज्ञानी को वो सब आता है, हमको नहीं आता। हमको क्या करना पड़ता है, वहां पर परोक्ष में वो है और आप देखो वो क्या है, तो अपन क्या करेंगे, अपने उपयोग को उस वस्तु पर केंद्रित करके अवधि ज्ञान लगाकर, अवधि ज्ञान के चश्मा लगाकर फिर बाहर दौड़ाएंगे, फिर वस्तु देखने का प्रयत्न करने पर वस्तु झलकेगी। अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, परोक्ष वस्तु को भी प्रत्यक्ष में देखने की शक्ति उनमें है, तो प्रतिबिंबित होते हैं कि उपयोग को लगाने पर वो समझ में आते हैं। लगाना पड़ा, अवधि ज्ञानोपयोग को भी लगाना पड़ता है, मनःपरि ज्ञानोपयोग को भी लगाना पड़ता है, श्रुत ज्ञानोपयोग को भी लगाना पड़ता है, लगाने पर ही समझ में आते हैं। लेकिन भगवान को कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, केवल ज्ञानी को। हाँ हाँ, लोकालोक प्रमाण इसलिए कहा है, केवल ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत का मतलब सभी ज्ञेयों में उसका प्रवेश है। देखो पहले अनंत ज्ञान है और ये अनंत ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य, और वे ज्ञेय पदार्थ किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं, इसलिए उनको ज्ञेय कहा। जितने पदार्थ हैं वो ज्ञान के विषय बनेंगे क्या नहीं? हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि का विषय न भी बने तो केवल ज्ञान के, ज्ञान का विषय तो सभी बन ही रहे हैं ना, इसलिए उनको ज्ञेय कहा। ज्ञान में ज्ञेय सारे प्रतिबिंबित होते हैं और ज्ञान का विषय वो बन जाते हैं। क्या ज्ञान दौड़ता है उनको देखने के लिए, केवल ज्ञान? केवल ज्ञान दौड़ता नहीं, दर्पण जहाँ रहता है वहीं रहता है। दर्पण ही वस्तुओं को प्रतिबिंबित कराने के लिए दौड़ता है क्या? नहीं, जहाँ दर्पण है वहीं है, वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दर्पण में उनको प्रतिबिंबित कराने की शक्ति है और उनमें प्रतिबिंबित होने की शक्ति है। देखो, उनमें होने की शक्ति है प्रतिबिंबित, और प्रतिबिंबित कराने की शक्ति इनमें, केवल ज्ञान में। अब यह केवल ज्ञान प्रतिबिंबित सारे पदार्थों को प्रतिबिंबित के रूप में उनको अपने ज्ञान का विषय बना रहा है, तो गेय तो हो गए वो। और केवल ज्ञान को इस मायने में सर्वगत कहा। सर्वगत यानी सभी विषयों को प्राप्त, सभी द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त जो ज्ञान है वो सर्वगत ज्ञान है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ भगवान को सर्वज्ञ क्यों कहा? केवल ज्ञान की अपेक्षा से सर्वज्ञ कहा। केवल ज्ञान सभी ज्ञेयों को अपना विषय बना सकता है, सबको जान सकता है, कोई भी कुछ भी बचता नहीं, इसलिए वह केवल ज्ञान सर्वगत ज्ञान कहलाता है। और सर्वगत होने से ही केवली भगवान को हम सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ज्ञाता, सर्वज्ञ का अर्थ देखो क्या है, सर्व यानी सब, सभी द्रव्य, और ज्ञ यानी जानना, जो ज्ञान सर्व को जानता है वो सर्वज्ञ ज्ञान, सर्व को जानने वाला ज्ञान। ये क्या पूछा था, क्या पूछ रहे थे? कि केवल ज्ञान को नहीं, केवल ज्ञान को लोकालोक ज्ञायक क्यों कहा, ऐसा प्रश्न था। लोकालोक ज्ञायक का तात्पर्य लोक, ये सब लोक, अलोक उसके बाहर का लोक। तो केवल ज्ञानी क्या ऐसा देख करके ये यहाँ तक लोक है और उसके बाहर जो है वो अलग अलोक है, आंख उठा करके देखेंगे? केवली भगवान के आंख होते हैं कि नहीं? आंखें इनका प्रयोग करते हैं क्या वो? हाँ, आंखों का प्रयोग करते हैं। कोई आगे पीछे आ गए तो ऐसा देखते हैं कौन आ रहा है। केवल ज्ञानी अपनी आत्मा में सभी अनंत द्रव्य को, अनंत परिणति को सब जान रहे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं, अंदर प्रतिबिंबित हैं। क्या देखना? द्रव्य ही स्वयं आ रहे हैं उस ज्ञान में, दर्पण में पदार्थ ही स्वयं झलक रहे हैं। क्या दर्पण ने बुलाया, आओ प्रतिबिंबित हो जाओ इधर, बुलाया क्या दर्पण ने पदार्थों को? हाँ, दर्पण के पास आप जाते हैं क्या, दर्पण ही आपको बुलाता है? दर्पण कहता है कि इधर आओ मैं चेहरा दिखाता हूं? नहीं, हम ही दर्पण के पास जाते हैं। हाँ, और फिर दर्पण के पास जाने के बाद भी देखो मैं तुमको प्रतिबिंबित कर रहा हूँ, दिख रहे हो क्या? देखो मेरे में तुम देखो, ऐसा कहता है क्या? नहीं, दर्पण पदार्थों को नहीं बुलाता और पदार्थ भी दर्पण में घुसते नहीं, केवल प्रतिबिंबित होते, वस्तुओं का प्रतिबिंब वहां है, वस्तु नहीं। केवल ज्ञान में क्या रहता है, वस्तु रहते हैं क्या? वस्तुओं का प्रतिबिंब रहता है, और वस्तु घुस जाएंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? कितना झेलना पड़ेगा उनको, भार, तीन लोक का भार क्या कम है क्या? ज्ञान में वस्तु नहीं जाते, ज्ञान में वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है और वह भी अनंत के रूप में होता है। दर्पण के सामने एक दर्पण रखो तो वो दर्पण उस दर्पण को भी ये दर्पण प्रतिबिंबित करता है और इस दर्पण को भी वो दर्पण प्रतिबिंबित करता है और ऐसे प्रतिबिंबित करते 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 आप दो दर्पण में सामने सामने रख करके देखेंगे तो एक एक ही दर्पण दिखता है क्या? हाँ देखो उसके भूत पर्याय उसकी भविष्यत पर्याय वर्तमान पर्याय सब दिख रहा है वहां। जो सामने दिख रहा है वो वर्तमान पर्याय है और उसको पीछे 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 और दर्पण दिख रहे हैं। तो एक दर्पण अनंत दर्पणों को दिखा सकता है, ये मेरे पास कैपेसिटी है, ये दर्पण बता रहा है। एक सिद्ध परमेष्टि जो विगत काल में अनंत मोक्ष गए हैं उनको भी प्रतिबिंबित करने की शक्ति रखते हैं कि नहीं? एक सिद्ध परमेष्टि भी दर्पण और अनंत सिद्ध परमेष्टि भी दर्पण। ये सिद्ध परमेष्टि उन अनंत सिद्ध परमेष्टियों में झलक रहे हैं और इस सिद्ध परमेष्टि में वो अनंत सिद्ध परमेष्टि इनमें झलक रहे हैं, एक दूसरे में झलक रहे हैं। लेकिन हम में क्या झलक रहा है? कुछ भी नहीं झलक रहा है, हम में तो एक ही झलक रहा है। कब भर घर जाएं, कब भाषा करें, कब खाएं, कब पिएं, कब सोएं, संसार के कार्य झलकते रहते हैं 24 घंटे। और इसमें अपना ज्ञान राग द्वेष मोह मोही बन करके कर्मों को बांधता रहता है और उसमें कर्म 5 प्रकार के कर्म ज्ञानावरण कर्म बनते रहते हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपुरी ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का धूल आकर के चिपक रहा है हमारे दर्पण पर। हमारा दर्पण निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। दर्पण को स्वच्छ रखने का उपाय क्या है? राग द्वेष नहीं करना। बिल्कुल ठीक कहा। आप अपने ज्ञान को कर्म के बंध से बचाना चाहते हैं तो क्या करें? आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अनंत बनाना चाहते हैं, अनंत जगत को ध्यान में रखना चाहते हैं, इस हार्ड डिस्क में डालकर सारे जगत को उसको जब चाहिए तब निकालना और देखना, ऐसा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? मेमोरी पावर बढ़ाना है। क्या करना चाहिए महाराज? घी खाना चाहिए अच्छी तरह से। पुद्गल पदार्थों को खाएंगे तो मेमोरी पावर नहीं बढ़ता है। यहाँ केवली भगवान बता रहे हैं मोहनी कर्म को जो जितना जीतेगा उसका उतना ही ज्ञानावरणी कर्म पुराना हटेगा और नया बंद नहीं होगा। तो मेमोरी पावर बढ़ेगा क्या? नहीं। हम क्या सोचते हैं? काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे तो मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। पुद्गल वस्तु को खाने की इच्छा से तो मेमोरी पावर और घट जाती है। इच्छा के कारण ये मेमोरी पावर घटता है। केवली भगवान कहते हैं राग द्वेष मत करो, मेमोरी पावर अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर भी अच्छा ही है, आपकी गलती नहीं है। फिर भी कोई राग द्वेष कर रहा है तो उनके पाप कर्म के उदय में वे राग द्वेष कर रहे हैं, उनकी कषाएं अलग है, आपकी कषाएं तो शांत है, हम तो शांत हैं। किसी को भी राग द्वेष करना हो तो करो, क्या मतलब है हमको चुपचाप रहना चाहिए? वो राग द्वेष कर रहा है तो उनको देख करके हमें भी राग द्वेष करना है क्या? ये कर्तव्य है क्या? हाँ, तो उनमें और आप में फर्क क्या रहा? फिर राग द्वेष करने वाले को देखकर हम भी राग द्वेष करने में उलझ गए, क्योंकि हम तो शांत बैठे थे और ये हमको देख करके राग द्वेष करने लगा, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप करने लगा, इसलिए मुझे भी क्रोध आया, मैं भी उनके साथ राग द्वेष करने लगा। तो उनमें और आप में फर्क क्या रहा? तो राग द्वेष करने पर ही शांति मिलती है, तो थोड़ा सा बंद करने पर ही शांति मिलती है, बंद करो फिर। यहाँ तो बंद से बचने के लिए मार्ग दर्शा रहे हैं कि आप शांत रहें। दीवाल पर आप पत्थर मारेंगे तो आवाज तो आएगी, और दीवाल से इधर कोई पत्थर, उधर से इधर कोई आ रहा है, तो वह पत्थर इधर आता है तो हवा से आएगा, हवा से चला जाएगा। ठन ठन आवाज इधर से नहीं आना चाहिए। दीवाल से आवाज आ गई, क्यों आ गई? दीवाल चेतन नहीं है, अज्ञान है, पर दीवाल पर पत्थर मारेंगे तो पत्थर वापस इधर ही आएगा ना। तुमने पत्थर मारा है, तुम्हारा पत्थर तुम ही ले ओ, वापस भेज देता है, वो वापस पोस्ट कर देता है। अचेतनवत हो जाओ। हम भी अचेतनवत हो जाएंगे तो इधर का पत्थर उधर नहीं जाएगा, तो उधर से भी इधर नहीं आएगा। दीवाल से हम टकराएंगे तो सिर फूटेगा ही। तो प्रयत्न हमारी तरफ से कुछ नहीं करना है, ये शांति है। और ऐसा लगता है कि नहीं, प्रयत्न किए बिना तो हमको भी जरा शांति नहीं मिलती। तो अन्याय के प्रतिकार में राग द्वेष नहीं रहता, ऐसा प्रतिकार यहाँ उपादेय है। राग द्वेष करते हुए प्रतिकार करना ये है। जैसे किसी ने आकर के कोई आपको भला बुरा कहा, और आप ऐसे नहीं है जैसा वो कह रहा है, तो आप प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन राग द्वेष भी, राग द्वेष से सहित होकर के भी प्रतिकार कर सकते हैं, और राग द्वेष से रहित होकर के भी प्रतिकार कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता ये है कि हम प्रतिकार करते ही नहीं, अपने आप में शांत रहते हैं। तीन रास्ते हैं। राग द्वेष किए बिना समझाया जा सकता है। हाँ, नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे तो राग द्वेष करके भी समझा सकते हैं, तो भी समझ सकते हैं क्या? राग द्वेष करते हुए भी समझाया जा सकता है, तो वो समझ सकते हैं क्या? उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। राग द्वेष से रहित होकर के समझाओ तो भी सफलता नहीं मिलेगी। राग द्वेष से सहित होकर के समझाओ तो भी सफलता नहीं मिलेगी। चुपचाप बैठो तो भी सफलता नहीं मिलने वाली है। हाँ, चुप क्यों बैठे हैं ऐसा बोलो कहता है, यानी आपसे कुछ ना कुछ पत्थर लेना ही चाहता है। टकराओ हमसे, चुप क्यों बैठे? तो क्या करना चाहिए? मुनि महाराज जो पांडव हैं, सुकोशल मुनि हैं, सुकमाल मुनि हैं, आए कि नहीं आए बाहर से? बाहर से उपसर्ग करने वाले निमित्त आए कि नहीं? उन निमित्तों को कुछ जवाब दिया? कैसे बैठे थे? चुपचाप बैठे थे, सब कुछ किया। गजकुमार के सिर पर तो शिगड़ी रख करके चले गए वो। वो तो मुनि महाराज थे, वो तो मुनियों का ही काम है, हमारा कुछ नहीं। हमारा जरा भी फर्ज नहीं बनता वैसा रहने का। मुनि बनने का ही तो अभ्यास करना है। आगामी 10 दिन में उपसर्ग आए तो क्या करोगे बोलो 10 लक्षण में भाग लेना है। 10 दिन तक कुछ भी प्रतिकार नहीं करना है, किसी से राग द्वेष नहीं करना है, कोई कुछ कहता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना है, उत्तर ही नहीं बल्कि मन में उनके प्रतिकूल विचार भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है, कल बताया था वैसा करना है, लेकिन करना है, कुछ ना कुछ करना ही है, नहीं करना भी करना है, ऐसा करना है, कुछ भी नहीं करना है ये करना है, ये अनेकांत तो भी अनेकांत प्रमाण नहीं साधना अनेकांत भी अनेकांत है, कुछ भी नहीं। जैसे सिद्ध भगवान बैठे हैं कुछ जवाब देते हैं क्या वो नहीं, उनको 1000 यहां से सुना दो उनकी आत्मा में सुनाई देती है आप क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ कहीं 3 लोग झलक रहा है तो आप यहां से जो कुछ भी प्रतिकूल वचन कहेंगे या स्तुति के वचन कहेंगे, स्तुति के वचन कहेंगे तो क्या प्रसन्न होंगे, या अच्छा है भक्त बहुत मेरी स्तुति कर रहा है, ऐसे कुछ विचार आएंगे उनमें। दर्पण के सामने अच्छा ड्रेस पहन करके आ गए, खड़े हो गए, दर्पण खुश होगा, क्या बढ़िया तुम और दर्पण के सामने फटे वस्त्र पहन करके चले गए तो दर्पण क्या नाराज होगा, मेरे सामने कैसा आ गया देखो। सिद्ध भगवान भी ऐसे ही हैं, वो कुछ भी ना प्रतिकार करते हैं, ना आपके अनुकूल विचार करते हैं, ना प्रतिकूल विचार करते हैं, वो केवल अपने ज्ञान में आप जो हैं वैसा देखते हैं और जानते हैं। ऐसा आप करो, जो भी आता है जैसा है वो वैसा उनको जानना देखना, बिगड़ना नहीं। बस नया सूत्र दे रहा हूं आज के दिन, जानो देखो बिगड़ो मत। आपकी बिगड़ी बन गई आज के दिन, आपकी बिगड़ी बन गई, इस सूत्र से अपनी बिगड़ी को बना लो तो बन जाएगी। जो भी सामने आता है ना, इतना ही कर्तव्य अपना, हम गृहस्थ हैं करना पड़ता है, ऐसा मत सोचो, अभ्यास भी तो करना है ना। एक वैराग्य, एक अनासक्ति का परिणाम, एक शांति, एक साधना, ये क्या है, क्या गृहस्थ को नहीं है, गृहस्थ को क्या ये साधना करना गलत है। अगर हम किसी परिस्थिति में व्यर्थ रूप से ही राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो ये तो व्यर्थ है, इसको क्या नहीं रोकना चाहिए, अपने ज्ञान को क्या जागृत नहीं रखना चाहिए। हम जाने देखें लेकिन उसमें कुछ भी बिगड़ने का उलझने का काम न करें, ये ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं यही करना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये जैसे सिद्ध परमिष्टि है ना, वैसे ही होने का ये पॉइंट है, ज्ञाता दृष्टा परिणामों से रहना। तो ये कला है, इस कला को धीरे धीरे सीखा जाता है, और सीख सीख करके जब अभ्यस्त बन जाएंगे ना, तो आप गृहस्थ रहें या मुनि रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आपको किसी भी माहौल में जा करके बैठने के बाद उसको तो केवल आप देखेंगे और जानेंगे, उसमें बिगड़ने का समय ही नहीं आता, अवसर ही नहीं आता, ऐसा हो जाएगा है क्या, जरा पकड़ के लाना उनको सबको दिखाएंगे, लोग देखो ये भी हैं और ऐसा बनना चाहिए, जहां धर्म है उधर ही मिलते, कौन है ऐसा, मुनिवर तो है ही, श्रावकों में पूछ रहे हैं हम, थोड़े बहुत रहते हैं ना, तो उनमें कैसे थोड़े बहुत गुण आ गए, वैसे ही सब में आ सकते हैं। सबको भी व्रति बनना चाहिए। कैसे व्रति? यही व्रत महान व्रत है कि हम किसी भी पदार्थ को देखकर जानेंगे, देखेंगे, परिस्थिति का अध्ययन करेंगे, गलत हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं, जानेंगे देखेंगे, हम अपने मन को बिगाड़ेंगे नहीं, इतना काम करना, यही वीतरागता है। और इस वीतरागता में नया कर्मों का बंध नहीं होता, और पुराने कर्म जो है ना, वो बहुत सारे जो पाप कर्म बंधे हुए हैं वो अनंत गुणित रूप से निर्जरित होते हैं। जानो देखो बिगड़ो मत, इसको हमेशा ताजा रखो, जहां भी जाते वहां हमेशा ताजा रहना चाहिए। और अपनी परीक्षा लेने के लिए कि हम जरा उत्तीर्ण हैं क्या नहीं, इसको देखने के लिए कहां जाना चाहिए? जहां जाने से अपना मन बिगड़ सकता है वहां जानबूझकर जाना। हाँ, परीक्षा होती है वहां, और वहां पर प्रैक्टिकल करना, जानो देखो बिगड़ो मत कहा, इसलिए उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो क्या कर रहे हैं, हमको भला बुरा कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं, कानों से सुनना, लेकिन बिगड़ना नहीं, अंदर बिगड़ना नहीं, कानों से सुनना छोड़ना, सुनना छोड़ना, बिगड़ना नहीं, जैसे सिद्ध परमिष्टि करते हैं वैसे ही करना। ऐसा करके तो देख लो कितना आनंद आता है, शांति ही शांति मिलती। शांति कहीं बाहर है क्या? शांति अंदर है। अशांति कहीं बाहर है क्या? वो भी अंदर है, दोनों ही अंदर हैं। अशांति अधर्म है, शांति धर्म है। किसको स्वीकार करना, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है, हमारे ज्ञान के ऊपर डिपेंड। हमारा ज्ञान उन वस्तुओं को कैसे जानेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। राग द्वेष से जानेगा या राग द्वेष से मुक्त होकर के उनको जानेगा, देखेगा, ये तो ज्ञान है। ये तो कहीं भी जाएगा, ये जाने का स्वभाव ही, इसको रोक भी नहीं सकते आप। मन जाएगा, ज्ञान जाएगा, वस्तुओं में तो प्रवृत्ति करने का इसका स्वभाव है, इसकी शक्ति को तो हम रोक सकते नहीं, जाएगा ये। लेकिन जाने का स्वभाव ही है तो जाने दो, कहीं भी जाने दो, लेकिन क्या क्या नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, बस इतना करना, और कुछ नहीं करना, यही करना। और यही करते समय कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, यही करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करो कह रहे हैं ना, तो राग द्वेष मत करो। राग द्वेष कर रहे हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ न कुछ करते नहीं रहना। आप अपने स्वभाव में रहना, विभाव में नहीं आना, विभाव का कर्ता नहीं बनना, विभाव का कर्ता बन गए तो दुखी हो गए। स्वभाव में रहना, स्वभाव में मतलब ज्ञान को राग द्वेष से मुक्त रखने का नाम ही स्वभाव ज्ञान है। एक क्षण, एक मिनट, दस मिनट, पांच मिनट, अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके ज्ञान में कोई राग द्वेष का तरंग उत्पन्न नहीं हुआ, राग द्वेष का तरंग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? वीतरागी कहेंगे ना, उसको स्वभाव ही कहेंगे ना। तो वो कोशिश करो ना, करे तो है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं, अंधकार है। क्यों, कमजोर हैं क्या? कमजोर हैं, अपने आप को कमजोर समझते नहीं? कमजोर तो नहीं समझते, लेकिन वो जब आते हैं सामने तो ऐसा हो ही जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका चिंतन करो, गलती किधर से है इसको खोजो, संशोधन करो, गलती किधर से है, किधर से है क्या उधर से है, हाँ अपने से है वो, उधर से गलती हो ही नहीं सकती। और उधर से गलती हो तो भी आपको लेकर के क्या करना, वो तो अज्ञानी है, वो तो जा रहे हैं संसार मार्ग में, जा रहे हैं दुख के मार्ग में, कर्म बांध रहे हैं, जा रहे हैं, उनको देख करके हम क्यों बिगड़े, वो गलत कर रहे हैं इसलिए हम भी करें क्या। एक व्यक्ति खुद जहर पी रहा है, हाँ? तो उनको देखा देखी जहर पीना सीख ले क्या हम नहीं पीना है, तो फिर वो हम नहीं पीते हैं तो पिलाने को आएगा, जबरदस्ती कोई पिला नहीं सकता जहर। पिला सकता है? कोई पिला नहीं सकता। हाँ अंदर ले चलना या नहीं चलना, अंदर घुटकना या नहीं घुटना आपके ऊपर है वो। और यदि आप घुटकते हैं और ये कहते हैं कि जबरदस्ती इन्होंने ही पिलाया, तो वो कोई जबरदस्ती नहीं पिला सकता, ये कहीं कोर्ट केस मैटर हो गया ना, तो इसने जबरदस्ती से जहर पिलाया तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा। गुटका किसने, ये पॉइंट लाते हैं वहां तो उन्होंने पिलाया इसलिए हमको गुटकना पड़ा, तो तुम्हारी गलती है, ऐसा हो जाता है। ज्ञान को निर्मल रखने का नाम सबसे अच्छा धर्म है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, तीन भव, कितने, सात भव झलकने वाला ये भामंडल है जो देवकृत है। आभामंडल में नहीं झलकते, भामंडल में। आभामंडल तो वो शरीर का प्रकाश है, जैसे इसका प्रकाश है वैसे शरीर का प्रकाश आभामंडल। और केवल ज्ञान का प्रकाश तो अनंत है, उसमें तो अनंत भव झलकते हैं। भामंडल में सात भव, केवल ज्ञान में अनंत भव, आपके अनंत भविष्य, अनंत भूत सब झलक रहा है। एक ने प्रश्न किया कि महाराज केवल ज्ञान यदि हमको 10 भव के बाद होने वाला है तो हमारे अनंत भव संसार के केवल ज्ञान में कैसे झलकेंगे, 10वें भव में हमको मोक्ष जाना है और हम मोक्ष से चले गए तो हमारे अनंत भव, भव यानी संसार भव, अनंत भव कैसे झलकेंगे केवल ज्ञान में। तो अनंत भव झलकते हैं कि नहीं केवल ज्ञान में, झलकते तो हैं, भूतकालीन झलकते हैं, भविष्यकालीन कितने भव झलकते हैं, फिर 10 भव झलकते हैं और फिर आगे के भव कैसे झलकेंगे, सिद्ध पर्याय झलकेगी, तो सिद्ध पर्याय में भी तो अनंतता होनी चाहिए, फिर उसमें अनंत कैसे है, एक ही सिद्ध परमिष्टि है, एक ही आत्मा है, उसमें क्या अनंत, उसमें भी अनंतपना झलकता है। जैसे एक सिद्ध परमिष्टि है, अपने केवल ज्ञान गुण है और उसकी पर्याय केवल ज्ञान पर्याय है और द्रव्य वह शुद्ध जीव द्रव्य है, ये शुद्ध जीव द्रव्य केवल ज्ञान पर्याय और अनंत ज्ञान शक्ति ये निरंतर परिणमनशील रहेंगे, वही पर्याय झलकती रहेगी अनंत काल तक। केवल ज्ञान के भी अनंत पर्याय हैं, वो सभी स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, वो स्वभाव अर्थ पर्याय यानी शुद्ध होने से स्वभाव, पर्याय यानी प्रतिक्षण देखने जानने की जो शक्ति है वो वेस्ट हो रही है, प्रति समय परिणमनशील है, वेस्ट हो रही है काल द्रव्य के निमित्त से। और ऐसे परिणमनशील कब तक है, अनंत काल तक। तो केवल ज्ञान रूपी पर्याय अनंत झलकते हैं, अनंत काल तक झलकते ही रहेंगे। और केवल ज्ञान सादी अनंत पर्याय वाला है। ये केवल ज्ञान रूपी पर्याय साधी अनंत पर्याय है। जब से प्राप्त हुआ वो साधी हुआ, आदि से सहित हुआ और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए अनंत है। अब भव नहीं है कहेंगे, भव जन्म मरण हो तो भव, भव नहीं है। ये सिद्ध अवस्था द्रव्य की अवस्था है। हाँ, ये अंतिम पर्याय है, अंतिम द्रव्य है, इसमें भव नहीं झलकेंगे। फिर द्रव्य झलकेगा, शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय झलकेंगे, वो अनंत रूप रहेंगे। 64 चंवर देवलोग 64 चंवर ढोरते हैं, 64 संख्या में 64। 64 क्यों, कभी विचार किया? देवलोग 64 चंवरों को लेकर के क्यों ढोरते हैं? वृद्धि, रुद्धि, 64 रुद्धियां होती हैं, ठीक है। हाँ, संख्या में 64 रुद्धियां हैं, तो क्या हुआ? हाँ, 64 रुद्धि धारक हैं, तो ये चंवर क्यों 64 ले लिया फिर? उसके उससे क्या मतलब है ये सब? 64 रिद्धियों के नाम तो हैं, वो रिद्धियों को देखकर देव ने 64 चंवर बना लिया। क्यों बनाया, क्यों ग्रहण किया? उनके विनय के लिए, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए। प्रातिहार किसको कहते हैं? प्रातिहार किसको कहते हैं, क्या परिभाषा है? जिसके जिनके द्वारा तीर्थंकर भगवान के गुणों की महिमा प्रकट होती है, उनको प्रातिहार कहते हैं। तो 64 चौरों के द्वारा केवली भगवान, अरहंत भगवान 64 रिद्धि के धारक हैं और उनकी महिमा को देवलोग इन चौरों के माध्यम से महिमा प्रकट कर रहे हैं, ऐसा पता चलता है। क्योंकि चर्चा होती है, देव लोग जब 64 लोग आएंगे और अपने अपने हाथ में वो चावर ढोरेंगे, उस समय चर्चा होती है इतने ही लोग क्यों आए। तो इसलिए आए, भगवान के पास रिद्धियां 64 होती हैं, उनके प्रति ये विनय प्रकट कर रहे हैं, भक्ति प्रकट कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये 64 ढोरना भी, चावरों को ढोरना भी क्या है? ये द्रव्य पूजा है, द्रव्य पूजा विनय है, यही ये भी द्रव्य पूजा है। कैसे द्रव्य पूजा? द्रव्य पूजा का मतलब यही समझ के बैठे हैं कि 8 द्रव्य को लेना और ऐसा ऐसा करना, इधर ढालना, ये यही द्रव्य पूजा, अकेला यही है क्या? और कुछ नहीं है। द्रव्य पूजा का मतलब द्रव्य का आलंबन लेकर भगवान के गुणगान करना, स्तुति, गुणों का बखान करना, ये। और 64 रिद्धियों के 64 चंवरों के माध्यम से किसका बखान कर रहे हैं? 64 रिद्धियों का बखान कर रहे हैं। तो किसका आलंबन ले रहे हैं? चंवरों का आलंबन ले रहे हैं। ये द्रव्य है क्या? नहीं, द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है कि चेतन द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य को लेकर, पुद्गल द्रव्य को लेकर उन भगवान के 64 गुणों का बखान कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बखान कर रहे हैं। तो ये द्रव्य पूजन नहीं है क्या? ये भी द्रव्य पूजन। मान लो 64 वो चंवर भी नहीं है हाथ में, सभी देव लोग ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, ये द्रव्य पूजन नहीं है क्या? बोलो क्यों? हाँ, पर द्रव्य का आलंबन लिया है। पर द्रव्य अचेतन द्रव्य, इसका आलंबन लेकर हम स्तुति करने लगे, ये भी द्रव्य पूजन है। हाथ जोड़ना द्रव्य पूजन, मस्तक नवाना ये भी द्रव्य पूजन, आसन लगाना पंचांग या साष्टांग आसन लगाकर नमोस्तु बोलना ये भी द्रव्य पूजन है। उच्चारण करना स्तुति स्तोत्रों का, मंत्रों का, गुणों का, गुणों के नामों का उच्चारण करना ये भी द्रव्य पूजन है। उच्चारण करते समय आत्मा किसका अवलंबन ले रही है? आत्मा जीव किसका अवलंबन ले रहा है? शरीर का। और उच्चारण करते समय वचन वर्गणाओं का वो भी पुद्गल है, शरीर का। जीव चाहिए, कंठ चाहिए, कंठ का अवलंबन किया और भगवान का स्तुति करने लगे, ये भी द्रव्य पूजन है। द्रव्य पूजन करते समय ये आवश्यक है क्या? ध्यान से सुने सभी जरा, द्रव्य पूजन करते समय क्या ये आवश्यक समझते हैं आप कि जीवों की हिंसा होना अनिवार्य ही है? बस यहाँ इस पॉइंट पर इसलिए आ रहा हूं कि आप जब हाथ जोड़ते हैं, कहाँ हिंसा हुई? नहीं हुई। ये निर्दोष निर्वध्य द्रव्य पूजा है। साष्टांग नमस्कार किए तो अपने शरीर का आलंबन लेकर के ही किया जा रहा है, कहाँ हिंसा हुई? नहीं हुई। असली द्रव्य पूजा जो है उसमें किसी भी परजीवों को पीड़न नहीं होना ही असली द्रव्य पूजा है। हिंसा धर्म नहीं है, ये तो मालूम है ना, निश्चित है क्या? नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म किसका नाम? अहिंसा का नाम ही धर्म है, इतना तो मालूम है ना? मालूम है। तो फिर धर्म के नाम से भगवान के गुणगान करने के लिए, स्तुति स्तोत्र करने के लिए किसी भी द्रव्य को उठाते समय उसमें परजीवों को पीड़न हो रहा है, परजीवों की पीड़ा हो रही है, तो ये द्रव्य पूजन में दोष है क्या? गुण है, दोष है। दोष को जबरदस्ती में स्वीकार करके हम यदि पूजन करते हैं तो आवश्यक भी क्या है? हिंसा को जबरदस्ती में स्वीकार करके पूजन कर रहे हैं, आवश्यक है क्या? नहीं नहीं महाराज, इसलिए करते रहे सावध दिलेशु बहुपुण्य राशु ऐसा कुछ लिखा है, वो तो ऐसा क्यों लिखा फिर? उसलिए करते थे हम तो, ठीक है। सावध दिलेशु बहुपुण्य राशु, सावध दिलेश, सावध का मतलब क्या कहलाता है? सावध ने हिंसा, हिंसा हिंसा किसको कहते हैं? जीवों के परपीड़न को ही हिंसा नहीं कहा यहां। मन में रागादि भाव उत्पन्न होना हिंसा है, और मन में रागादि भाव किसके प्रति हो रहे हैं? यहां पर के प्रति, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उन्हीं के प्रति हम रागी बने हैं, क्या ये हिंसा नहीं? ये प्रशस्त हिंसा है। हिंसा दो प्रकार की, अप्रशस्त और प्रशस्त। जब अपने परिणाम शुभ परिणाम रहे तो उस समय पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, बंध मार्ग हिंसा मार्ग है या अहिंसा मार्ग? हिंसा मार्ग है। तो ये प्रशस्त है, प्रशस्त का बंध है तो प्रशस्त हिंसा है, तो इसको किए बिना तो चलता ही नहीं है। इसको किए बिना आप भगवान की स्तुति कैसे करेंगे? भगवान के गुणों से अनुरागी होंगे तभी तो स्तुति करेंगे ना। भगवान के गुणों से अनुरागी होंगे तभी तो स्तुति होगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं हम? गहराई में जा रहा है थोड़ा। परिणाम दो प्रकार के, अप्रशस्त परिणाम और प्रशस्त परिणाम। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तब भी हिंसा होती है, और जब स्तुति नहीं करते तब हिंसा नहीं होती। जब आप अपने आप में लीन रहेंगे, कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। जब भगवान की हम पूजा ही नहीं करते तब हिंसा नहीं होती, पर भगवान के जब भी पूजन करने के लिए जाएंगे हिंसा नियम से होगी, प्रशस्त रूप होगी, वो प्रशस्त बंद का अनुभव करना पड़ेगा। ये स्व की हिंसा है, इसको कैसे रोकेंगे? नहीं, रोकना नहीं, इसको रोक ही नहीं सकते और रोकना भी नहीं, क्योंकि जब हम इसमें नहीं बैठ सकते तो क्या करना पड़ेगा हमको? प्रशस्त में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी कि अप्रशस्त में, प्रशस्त कार्यों में स्तुति स्तोत्र इत्यादि में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अप्रशस्त में तो बिल्कुल जाना ही नहीं अपने को। अप्रशस्त से बचने के लिए, अप्रशस्त हिंसा से बचने के लिए प्रशस्त में प्रवृत्ति करो, ऐसा कहा। और पूजन करते समय ही अप्रशस्त हिंसा का संदर्भ आ गया तो फिर क्या होगा? पर जीवों को पीड़न होने लग गया तो फिर क्या होगा? वहां पर पापाश्रय होगा ही होगा। क्या हम ऐसे पापाश्रय से बच करके पूजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं? क्या कोई मार्ग ही नहीं है? क्या बिल्कुल कोई मार्ग ही न होता तब तो आलंबन आवश्यक था। मार्ग है क्या? नहीं। तो यदि मार्ग है तो अनावश्यक रूप से अप्रशस्त हिंसा नहीं करना। मार्ग है तो, मार्ग ही नहीं है तो होती ही है हिंसा। समझ में आ गया? चिंतन कर लेना। अप्रशस्त हिंसा से बचना है। प्रशस्त हिंसा हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ भी नहीं सकते हम। प्रशस्त और अप्रशस्त हिंसा से कहां बच सकते हैं? ध्यान में। ध्यान में ना पुण्य का बंध होता है ना पाप का, दोनों से हम बचते हैं। ध्यान के काल में कोई भी देवायु का बंध नहीं होता, कोई भी गति का बंध नहीं होता, ये प्रशस्त का बंध रुक जाता है, समर होता है। और पूजन करते समय आप देवायु का बंध कर सकते हैं, देवायु का बंध कर सकते हैं, मनुष्यायु का बंध कर सकते हैं, त्रिरंच आयु और नरक आयु से बचेंगे, बचते हैं। क्यों? त्रिरंच आयु और मनुष्य नरक आयु का बंद करना चाहो तो अप्रशस्त पूजन करो, पर जीवों को पीड़न के साथ पूजन करो, और वो भी आनंद से करो तो भी होगा। ये हिंसा आनंद रौद्र ध्यान कहलाता है। हिंसा करने में ही जिसको आनंद आता है वह हिंसा आनंद रौद्र ध्यान है। और उस समय में पता नहीं चलता कि मैंने कितने जीवों का घात किया, क्योंकि आनंद में था। हमारे परिणाम हिंसा के नहीं थे ये कहने में आता है, लेकिन आनंद भी हिंसा है। क्या बता रहे हम? जिसमें पर जीवों की पीड़ा नहीं है ऐसा द्रव्य है नहीं, दुनिया में है नहीं क्या? फिर क्यों उसका उपयोग क्यों ना करें? बंद के मार्ग से, अप्रशस्त बंद के मार्ग से क्यों ना बचे हम? ये चिंतन करना चाहिए। ऐसा खींचना नहीं कि पहले पासुन जो हम कर रहे हैं चलो, हाँ पहले पासुन पासुन कर करके, ऐसा उसमें नहीं अटकना, ज्ञानी बनना। समय हो गया चिन्वानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।
हाँ।